नमस्कार भारत, आज है 7 जून, दिन बुधवार। स्वीकार कीजिए संदीप सोनी का नमस्कार। अमरीकी राष्ट्रपति ट्रंप का दावा, कतर का हुक्का पानी उन्होंने ही बंद कराया, लेकिन कितना दम है ट्रंप के इस दावे में?
मुझे नहीं लगता कि ये बात सही है। ये तो हर बार हर अमेरिकन प्रेसिडेंट, हर वेस्टर्न मुल्क का प्रेसिडेंट ये बात कहता है।
भारत के मध्य प्रदेश राज्य में किसान सड़कों पर, प्रदर्शन के दौरान गोली लगने से कम 5 किसानों की मौत। पहले महाराष्ट्र और अब मध्य प्रदेश, किसान क्यों कर रहे हैं प्रदर्शन?
जब इनकम नहीं किसान को मिलती है तो कोई चारा और नहीं है कर्जा लेने के अलावा, तो कर्जे पे कर्जा, एक लिमिट आ गई तो कहीं ना कहीं तो एक गुस्सा फूटना था।
होंगी और भी खबरें, समाचार पत्रों की सुर्खियां भी, लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार, कुलदीप मिश्र से। कतर को अलग थलग किए जाने के बीच अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सऊदी अरब के शाह सलमान से बात की है। इससे पहले ट्रंप ने अरब देशों की ओर से हुए कतर के बहिष्कार को अपनी हालिया मध्य पूर्व यात्रा का नतीजा बताया था और इसके लिए सऊदी अरब की तारीफ की थी। हालांकि व्हाइट हाउस ने कहा है कि वह इस मामले को सुलझाने के लिए सभी पक्षों के संपर्क में है। उधर अमरीकी रक्षा मंत्रालय ने मध्य पूर्व में अमरीकी वायुसेना के सबसे बड़े अड्डे की मेज़बानी के लिए कतर को शुक्रिया कहा है। व्हाइट हाउस के प्रवक्ता शॉन स्पाइसर ने कहा,
There's been tension among Qatar's neighbors for quite some time. The United States continues to be in close communication with all the parties to resolve the issues.
कतर के पड़ोसियों के बीच काफी समय से तनाव है। अमेरिका मसलों के हल और सहयोग को पुनर्स्थापित करने के लिए लगातार सभी पक्षों के संपर्क में है, जो क्षेत्रीय सुरक्षा के लिहाज से बहुत जरूरी है। ये थे व्हाइट हाउस के प्रवक्ता शॉन स्पाइसर के शब्द। ब्रिटिश प्रधानमंत्री टेरेसा मे ने कहा है कि वह मानवाधिकारों से जुड़ा ऐसा कोई भी कानून बदलने को तैयार हैं जो पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों को आतंकवाद के खतरे से प्रभावी ढंग से निपटने से रोकता हो। उनकी कंजर्वेटिव पार्टी के अधिकारियों ने ऐसे संकेत दिए हैं कि अगर गुरुवार को होने वाले चुनाव में टेरेसा फिर से प्रधानमंत्री चुनी जाती हैं तो उनकी सरकार यूरोपीय मानव अधिकार कानूनों के कुछ प्रावधानों से बाहर आने का फैसला ले सकती है। लंदन ब्रिज हमले को अंजाम देने वाले चरमपंथियों में से एक खुर्रम बट के चाचा ने बट के कृत्य की निंदा की है। पाकिस्तान के झेलम में बीबीसी से बात करते हुए नासिर दार ने इन हत्याओं को बर्बर और शर्मनाक बताया और इस दौरान वह भावुक भी हो गए। बीते शनिवार को हुए इस हमले में 7 लोगों की मौत हो गई थी और करीब 50 अन्य घायल हो गए थे। नासिर दार ने कहा, हम पीड़ितों के साथ हैं, मुझे भी उनके नाम नहीं पता, लेकिन मुझे लगता है कि वे मेरे रिश्तेदार हैं, मेरे भाई हैं। मैं नहीं जानता कि उनके नाम क्या थे, वे किस मुल्क के थे, उन्हें क्यों मार दिया गया। वो खरीदारी करने और खाना खाने शहर आए थे, कौन उन्हें धक्का देने, हमला करने और मर दिए जाने की इजाज़त देगा? कोई मज़हब इजाज़त नहीं देगा, ये मज़हब नहीं है। ये थे खुर्रम बट के चाचा नासिर दार के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। फ्रांस की राजधानी पेरिस में मंगलवार शाम एक शख्स ने एक पुलिस अफसर पर हथौड़े से हमला कर दिया, जिसके बाद एक दूसरे पुलिस अफसर ने उस पर गोली चला दी। ये हमला मशहूर नोत्रे डेम कैथेड्रल के बाहर हुआ। फ्रांस के आंतरिक मामलों के मंत्री जेहा कुलोम ने कहा है कि हमलावर ने चिल्लाते हुए कहा था कि यह सीरिया के लिए है। सरकारी वकीलों ने इसे आतंकवादी घटना मानते हुए कार्रवाई शुरू कर दी है। ब्राज़ील के शीर्ष निर्वाचन न्यायालय में वो सुनवाई शुरू हो गई है जिसके बाद राष्ट्रपति मिशेल टेमर को पद से हटाया भी जा सकता है। ये अदालत तय करेगी कि कथित अवैध चुनावी फंडिंग के संबंध में 2014 के चुनावों को रद्द किया जाए या नहीं। ये चुनाव जीतकर वर्कर्स पार्टी की डिल्मा रूसेफ राष्ट्रपति बनी थी, लेकिन देश के बजट में गड़बड़ी के आरोपों के चलते महाभियोग लगाकर उन्हें हटा दिया गया था। इसके बाद नरम दक्षिणपंथी मिशेल टेमर राष्ट्रपति बने थे। अमरीकी रक्षा मंत्रालय ने चीन की सैन्य ताकत पर अपनी सालाना रिपोर्ट में कहा है कि चीन और विदेशी ठिकाने बना सकता है। बीबीसी समाचार।
बीबीसी हिंदी से दिन की पहली सभा नमस्कार भारत सुन रहे हैं आप संदीप सोनी के साथ रेडियो के साथ साथ bbchindi.com और अपने मोबाइल फोन पर भी नमस्कार भारत का सीधा प्रसारण। देश दुनिया में इस समय दो बड़ी खबरें हैं। सवाल उठ रहे हैं कि किसान को क्यों सड़कों पर उतरना पड़ता है, पहले महाराष्ट्र और अब मध्य प्रदेश, जहां प्रदर्शन के दौरान गोली चली और कम से कम 5 किसान मारे गए। इस खबर पर आएंगे हम, लेकिन शुरुआत अंतर्राष्ट्रीय खबर से। लगातार दूसरे दिन कतर और अरब देशों की तनातनी अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में सुर्खी बनी हुई है। ताज़ा खबर यह है कि कतर से सऊदी अरब, मिस्र और बहरीन जाने वाली उड़ानों को रद्द कर दिया गया है। सऊदी अरब ने कतर एयरवेज का लाइसेंस भी रद्द कर दिया। नतीजा ये हुआ कि लोगों की आवाजाही एकदम से रुक गई है।
المشكله انه حازين احنا بالقطريه وطرف العلاقات انقطعت ووقفت الطيران فجينا نشوف ايش المشكله।
सऊदी अरब की राजधानी रियाद में मौजूद सीरिया के एक शिक्षक कह रहे थे कि हमारी बुकिंग कतर एयरवेज के साथ थी, लेकिन संबंध टूटने से उड़ानें रद्द हो गईं और अब हम ये पता करने आए हैं कि वो हमारी टिकट के पैसे भी वापस करेंगे या नहीं। सीरिया के इस शिक्षक की तरह हजारों लोग हैं जो कतर और अरब जगत के झगड़े की वजह से फंस गए हैं। भारत के संदर्भ में भी हम चर्चा करेंगे आगे, लेकिन पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बात करते हैं। ट्रंप ने दावा किया है कि कतर का हुक्का पानी उनके कहने पर ही बंद किया गया है। ये उनकी सऊदी अरब की यात्रा का असर है जो उन्होंने हाल में की थी। ट्रंप का ये दावा कितना सही, कितना ठोस, जानने के लिए मैंने अमेरिका की डेलावेयर यूनिवर्सिटी में अंतर्राष्ट्रीय मामलों की जानकार प्रोफेसर मुक्तदर खान से अब से कुछ देर पहले बात की।
मुझे नहीं लगता कि ये बात सही है। ये जरूर है कि ट्रंप और उनके साथ जो लोग गए थे वहां पर, उन्होंने सऊदी अरेबिया और दूसरे मुल्कों, मुसलमान मुल्क जो वहां पर आए थे, तकरीबन 50 मुल्कों के नुमाइंदे, उनसे ये कहा कि जो एक्सट्रीमिस्ट फंडिंग है, टेररिस्ट फंडिंग है ग्रुप्स को, वो कम किया जाए। ये तो हर बार हर अमेरिकन प्रेसिडेंट, हर वेस्टर्न मुल्क का प्रेसिडेंट ये बात कहता है, और उस बात के रिएक्शन में सऊदी अरब ने एक सिग्नल ले लिया कि कतर को आइसोलेट कर दिया जाए। लेकिन असल वजह तो ये है कि पिछले चंद महीनों में कतर ने तकरीबन $1 बिलियन ऐसे ग्रुप्स को दे जो ईरान से ताल्लुक रखते हैं, और इस वजह से वो नाराज हैं। दूसरी, मुस्लिम ब्रदरहुड को भी सपोर्ट करता है कतर और किए जा रहा है, तो उसके वजूहत कई हैं। ट्रंप की जो बात है वो बिल्कुल सही नहीं है।
और आपको क्या लगता है कि कतर का जो मौजूदा संकट है कब तक जारी रहेगा या कितने जल्दी सुलझ भी सकता है?
देखिए, कतर के पास एक बहुत बड़ा कार्ड ये है, अमेरिका का सबसे, उस एरिया का सबसे इम्पोर्टेंट बेस कतर में है। इराक में जो सेकेंड जंग जो की थी सदर बुश के जमाने में, वो उसका लिए तो एक कतरी बेस था। अभी 10,000 से ज्यादा अमेरिकन ट्रूप्स कतर में बेस्ड हैं, और ईरान के खिलाफ जो सबसे बड़ा डिटरेंस है अमेरिका का, जिससे सऊदी अरेबिया को भी सपोर्ट है, वो बेस कतर में है। तो कतर के पास एक बहुत बड़ा कार्ड है। तालिबान का एक वाहिद ऑफिस है, वो भी दोहा में है। हमास की जो लीडर्स हैं, जो गाजा में नहीं होते, वो सारे हमास के लीडर्स, वो सब बैठे हुए हैं कतर में। तो एक किस्म से अंग्रेजी में एक फ्रेज है, हंटिंग विद द हाउंड एंड रनिंग विद द हेयर, यानी वो शिकार के साथ भी भाग रहा है और शिकारी के साथ भी शिकार कर रहा है। तो कतर की ये डुप्लिसिटी है और इस वक्त फंस गया है। तो अब ये हो जाएगा कि सऊदी अरेबिया की तरफ से मार्कर्स आ जाएंगे कि तुम मुस्लिम ब्रदरहुड को निकाल दो कतर में से, तुम हमास को सपोर्ट करना खत्म कर दो, तुम ये जो फंडिंग दे रहे हो डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स को, उसको खत्म कर दो। अगर कतर वो चीजें नहीं करता तो यूएई और सऊदी अरब मिलकर ना सिर्फ कतर को रीजनली आइसोलेट कर देंगे, बल्कि अमेरिका पर भी प्रेशर डालेंगे कि वो कतर के साथ अपने ताल्लुकात खत्म कर ले।
ये थे प्रोफेसर मुक्तदर खान, जो कतर का हुक्का पानी बंद करने संबंधी अमरीकी राष्ट्रपति ट्रंप के दावे की पड़ताल कर रहे थे और बता रहे थे कि कतर का ये मौजूदा संकट कब और कैसे खत्म हो सकता है। चलिए अब रुख कर रहे हैं भारत का, जहां उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल इलाके में कतर और अरब देशों की तनातनी की वजह से कई घरों में, कई परिवारों में काफ़ी हलचल मची हुई है। इस बारे में और जानकारी के साथ लखनऊ से समीरात मजमिश्र।
پوروانچل کے اعظم گڑھ، جونپور، وارانسی، غازی پور، مئو، بھدوہی، گورکھپور، بستی سمیت کئی ضلعوں کے ہزاروں لوگ قطر میں محنت مزدوری کر کے اپنے پریوار کا پیٹ پالتے ہیں۔ قطر پر پرتبند کے بعد نہ صرف وہاں کام کرنے والے بھارتیوں میں ایک طرح کی چنتا ہے بلکہ یہاں رہ رہے ان کے پریوار کے لوگ بھی پریشان ہیں، حالانکہ اس پریشانی کو لوگ کھل کر بتانے سے ہچک بھی رہے ہیں۔ گورکھپور کے رہنے والے فتح محمد کے بیٹے اور پریوار کے کئی لوگ قطر میں رہتے ہیں۔ فتح محمد کہہ رہے تھے کہ ابھی کل ہی بات ہوئی ہے، کوئی دقت نہیں ہے، لیکن میڈیا میں جو کچھ سننے میں آ رہا ہے اسے لے کر گھر پریوار میں چنتا ہونا سوابھاوک ہے۔ حالانکہ بچے بتا رہے ہیں کہ ابھی نوکری پر کسی طرح کا کوئی خطرہ نہیں ہے۔ یہ تھے گورکھپور کے رہنے والے فتح محمد کے شبد۔ پوروانچل کے تمام ضلعوں کے لوگ سعودی عرب، سنیکت عرب امیرات، کویت، عمان، قطر جیسے کھاڑی دیشوں میں رہتے ہیں۔ زیادہ تر لوگ مزدوری کرتے ہیں اور ان کی وجہ سے یہاں رہنے والے ان کے پریوار کا خرچہ بھی چلتا ہے۔ عبدالستار قطر کے دوحا میں رہتے ہیں اور ایک پرائیویٹ کمپنی میں ادھیکاری ہیں۔ ان کی وجہ سے قطر میں پوروانچل کے کئی لوگوں کو نوکری ملی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ فی الحال کسی طرح کا سنکٹ تو نہیں ہے، لیکن لوگوں میں آشنکا ضرور ہے۔
اس میٹر پہ یہاں پہ کوئی کسی سے بات نہیں کر رہا ہے۔ گھر والے ہیں، ان کو معلوم ہے، ابھی تو گھر پہ ہی بات کر رہے تھے ہمیشہ، مطلب دن میں دو چار دس بار خالی وقت میں، ابھی تو واٹس ایپ کا زمانہ ہے، اسکائپ کا ہے، ویبر کا ہے، تو جیسے گھر کی طرح ہے، بس خالی دوری ہے لیکن نزدیکیاں گھر کی طرح ہے۔ جو ایئر لائن جو ہے ان کی بند کیے ہوئے ہیں، تو اس کے لیے انہوں نے روٹ اپنا کھول لیے ہیں، مطلب کہاں کہاں جانا ہے تھوڑا سا گھوم کے جا رہے ہیں۔ کھانے پینے کی جو ویوستھا ہے، جو بیچ میں تھوڑا حلہ ہوا کہ ہاں مہنگا ہو جائے گا، اس کے لیے ہم لوگوں نے خرید لی ہے۔
وہی گورکھپور کے رہنے والے ساماجک کاریکرتا گورو دوبے کا کہنا ہے کہ لوگ کھل کر کچھ بولنے سے ڈر رہے ہیں، لیکن جب سے پرتبند والی خبریں آئی ہیں قطر میں رہ رہے لوگوں کے پریوار والوں میں زبردست ہلچل ہے۔ لوگوں کو نوکری جانے کا ڈر تو ہے ہی، سلامتی کی چنتا بھی ستا رہی ہے۔
کیونکہ 5-6 مہینے پہلے سعودی عرب سے بھی لوگ واپس کیے گئے تھے، وہاں کی حکومت نے یہاں کے لوگوں کو واپس کیا تھا، تو تھوڑی انہونی کا بھی ہے، یہاں ماحول ہے یہاں کے لوگوں میں کہ کہیں مطلب قطر سے بھی نہ واپس کر دے، تو ان کی روزی روٹی میں سنکٹ ہے۔ کیونکہ ہمارا پورا ایریا جو ہے دبئی میں، مسکٹ میں، دوحہ میں، سعودی میں ہے لوگ، یہاں کوئی روزگار کا سادھن تو ہے نہیں، بس وہیں جا کے کماتے ہیں، یہاں رہتے ہیں، پیسہ تو اسی کی سمبندتا ہے یہاں پہ ہمارے بیلٹ میں خارج دیش کی۔ آج جانکاری ملی ہے کہ جو یو ای ایکسچینج کام کرتی ہے کرنسی کو کنورٹ کرنے کا، اس نے شاید اپنے سب ایجنٹوں کو بولا کہ جو قطر کی مدرا ہے قطری ریال، وہ ابھی نہ لے، اس کو روک دیا ابھی۔
وہیں سرکاری ادھیکاریوں کا کہنا ہے کہ ان سے ابھی تک کسی نے کوئی آشنکا نہیں ظاہر کی ہے اور قطر میں رہ رہے سبھی لوگ سلامت ہیں۔ لیکن جانکاروں کا کہنا ہے کہ جس طرح سے کرنسی بدلنے کی پرکریا کو بند کرنے کی خبریں آ رہی ہیں، اس سے لوگوں کی آشنکائیں بڑھیں گی ہی، کم نہیں ہوں گی۔ سمیر آتمج مشر، بی بی سی، لکھنؤ۔
دکشن بھارت میں بھی آبادی کا ایک بڑا حصہ ایسا ہے جس کا اپنا کوئی نہ کوئی سگا، بھائی بندھو، بیٹا، پتا، دوست، یار قطر یا کھاڑی کے کسی انیہ دیش میں روزی روٹی کما رہا ہے۔ اب یہی لوگ ایک دوسرے کو فون لگا کر حال چال پوچھ رہے ہیں اور امید کر رہے ہیں کہ قطر اور باقی دیشوں کا جھگڑا جلد ختم ہو جائے۔ سنیے عمران قریشی کی رپورٹ۔
قطر میں قریب 7 لاکھ بھارتیہ کام کرتے ہیں اور اس میں سے قریب 3.5 لاکھ کیرلا راجیہ سے گئے ہیں۔ وہ کنسٹرکشن ورکر سے لے کر کئی کمپنیوں میں بڑے پدوں پر کام کر رہے ہیں۔ تو جب پڑوسی دیشوں نے قطر سے رشتے توڑے تو ظاہر ہے کہ ایک پریشان نفیسہ نے اپنے پتی کو فون کیا۔ جب کل صبح پتا چلا تو ہم بھوشیہ سے بہت چنتت ہو گئے۔ ہم نے سوچا کہ اب کیا ہوگا، ہمارا بیٹا بنگلورو کی ایک کالج میں پڑھ رہا ہے اور ہم یہاں 2 مہینوں سے ہیں۔ ہم نے اپنے پتی کو فون لگایا اور وہ بڑے ٹھنڈے طریقے سے کہا کہ کچھ نہیں ہوگا۔ یہ تھے نفیسہ کے شب۔ نفیسہ اپنا اصلی نام بتانا نہیں چاہتی تھی۔ دوسرے بھارتوں نے بھی اپنا نام نہیں بتانے کے شرط پر بی بی سی سے کہا کہ سپر مارکیٹ سے لوگوں نے بہت خریداری کی ہے۔ قطر گیس اور تیل کا بڑا اتپادن کرتا ہے، لیکن اس کو کھانے کی چیز زیادہ تر سعودی عربیہ سے آتی ہیں۔ نفیسہ کے بات سے سہمت ہیں قطر میں ایک ملٹی نیشنل کمپنی میں کام کرنے والے دیپک کمار شٹی۔
جیسے بھی نیوز پیپر میں آیا کہ سعودی نے لینڈ، سی اور بارڈر کلوز کر دیا ہے، اس کی وجہ سے کچھ لوگوں نے جا کے سپر مارکیٹس میں اور اپنا پورا جو ڈیلی جو روزانہ جو یوز کرتے ہیں جو سٹفز، ڈیلی یوزڈ سٹفز، ان کو تو تھوڑا سٹور تو کر لیے ہیں۔ جن لوگوں نے شاید ایمریٹس سے ہوگا یا گلفار ہوگا، اتحاد ہوگا، دوسرے جو ایئر لائنس میں جو ٹریول کر رہے تھے، ان کے لیے ضرور تکلیف ہوگا، کیونکہ उन्होंने पूरा फ्लाइट कैंसिल कर दिया है, जो जहाँ से दोहा से जो बाहर के लिए निकलता है और बाहर से जो दोहा के लिए आते हैं इन एयरलाइन के थ्रू, तो वो तो बंद हो गए हैं। तो उनके लिए जरूर मुश्किल होंगी, बिजनेसमैन के लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा क्योंकि चार पांच देश के लोगों ने तो बिल्कुल ट्रैवल बैन कर दी।
दिलचस्प बात यह है कि हमारी जितनी भी लोगों से बात हुई उन्हें उम्मीद है कि ये समस्या एक हफ्ते में खत्म हो जाएगी, और इस दावे के पीछे लोग साल 2014 की बात याद दिलाते हैं जब खतर को इसी तरह अलग थलग किया गया था। इमरान कुरैशी, बीबीसी बेंगलुरु।
75 वर्षों से आपके साथ
बीबीसी हिंदी रेडियो,
सुनिए अपने मोबाइल पर
और ऑनलाइन भी।
बीबीसी से नमस्कार, भारत सुन रहे हैं आप, संदीप सोनी के साथ। आज है 7 जून, दिन बुधवार। भारत में आजकल किसान अखबारों की सुर्खियां बन रहे हैं। आगे समाचार पत्रों की समीक्षा में जानेंगे हम आज क्या छपा है। पहले बात मध्य प्रदेश की, जहां किसान अपनी बेहतरी की मांग के साथ सड़कों पर उतरे, प्रदर्शन किया, लेकिन गोलियां चली और कम से कम 5 किसान मारे गए। प्रदर्शनकारी कह रहे हैं कि गोलियां पुलिस की बंदूक से निकली, लेकिन सरकार इससे इनकार कर रही है। जो भी हो, मध्य प्रदेश में आज ये मामला तूल पकड़ता नजर आ रहा है। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी आज मंदसौर जा रहे हैं, ये घटना जहां हुई। राज्य के मालवा और निमाड़ क्षेत्र के किसान काफी उग्र नजर आ रहे हैं, सरकार की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। सवाल ये कि पहले महाराष्ट्र और अब मध्य प्रदेश, ताज़ा घटनाएं हैं जहां हमने किसानों को सड़कों पर उतरते देखा, क्या वजह है इसकी? जानने के लिए हमारे सहयोगी वात्सल्य राय ने खेती किसानी मामलों के जानकार देवेंद्र शर्मा से बात की।
जब इनकम नहीं किसान को मिलती है तो कोई चारा और नहीं है कर्जा लेने के अलावा, तो कर्जे पे कर्जा एक लिमिट आ गई, तो कहीं ना कहीं तो एक गुस्सा फूटना था। कई दिनों से हम देख रहे हैं, पहले तमिलनाडु के किसान दिल्ली में आए, फिर उत्तर प्रदेश में डिमांड हुई, फिर पंजाब में डिमांड हुई, महाराष्ट्र में डिमांड हुई, इससे पहले तेलंगाना में कर्जा माफ किया गया किसानों का। तो सारे देश में किसान दुखी हैं, तो वो क्या करेंगे, वो यही करेंगे, डिमांड ही करेंगे, लेकिन जब कोई सुनवाई ना हो तो अल्टीमेटली उसको फिर सड़कों पर उतरना पड़ता है।
कई लोगों का कहना है कि जो नीतियां बन रही हैं वो कॉरपोरेट परस्त नीतियां हैं, वो किसान परस्त नीतियां नहीं है।
इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें सिर्फ भाजपा की बात नहीं है, जो पिछली सरकारें हैं कांग्रेस की या कोई और भी जो छोटे समय के लिए सरकारें आई हैं भारत में, वो भी सबकी सब ये समझ के चल रही हैं या इस नीति पे चल रही थी कि किसानों को खेती से बेदखल करना है और किसानों को शहरों में लेके आना है, क्योंकि शहरों में आपको सस्ते लेबर की, दिहाड़ी मजदूरों की जरूरत है, वो कहाँ से आएंगे अगर किसानों को खेती से नहीं निकाला जाएगा। क्योंकि ये जो नीति है, ये वर्ल्ड बैंक IMF कब से हमें बोल रहा है कि आपको इस पे पालन करना है, और ये नीतियां इस तरीके से बनाई जा रही है कि आज सारे का सारा जो देश का खजाना है, और ये मैं पिछले कम से कम 10-15 साल से देखता रहा हूँ कि सारे का सारा खजाना जो है वो कॉरपोरेट के लिए खोल दिया जाता है, उसके बाद उनकी फिर ऋण माफी होती है। पिछले 13 साल में 55 लाख करोड़ रुपए के टैक्स एग्जेम्पशन दिए हैं हमने कॉरपोरेट्स। 55 लाख करोड़ रुपए अगर हमने आज एग्रीकल्चर पे हमने लगाए होते तो हमारे देश के एक अध्ययन के हिसाब से हमारे देश में एक साल में गरीबी मिटानी हो तो हमें 48,000 करोड़ चाहिए, मात्र 48,000 करोड़ रुपए। 55 लाख करोड़ रुपए अगर हमने गरीबी हटाने के लगाए होते तो हमारी 110 साल की गरीबी हट जाती।
मौजूदा सरकार जो है, जब किसानों की बात आती है वो यही कहती है ये गरीबों की किसानों की सरकार है। सरकार के पास गिनाने के लिए काफी कुछ है, अभी 3 साल पूरे हुए, एक लंबी फहरिस्त बताई गई। इस सरकार की नीतियों के बारे में आप क्या कहेंगे?
देखिए, आशा बहुत थी, अपेक्षा बहुत थी। प्रधानमंत्री जी ने इलेक्शन के टाइम पर कहा था देश में घूम घूम कर कि आप लोग मुझे वोट दो, मेरे को वोट देंगे, मेरी सरकार को आप लेके आएंगे तो मैं दावा करता हूं कि मैं स्वामीनाथन कमेटी रिपोर्ट के हिसाब से मैं आपको 50% प्रॉफिट लागत के ऊपर दूंगा। और जब वो सरकार बन गई, लोगों ने वोट दिया, सरकार पूरी मेजोरिटी में आई है, लेकिन जब वो सरकार बन गई, कभी आपने सुना है कि हमारे प्रधानमंत्री ने उस 50% की बात भी की हो?
उत्तर प्रदेश में सीमांत और छोटे किसानों की कर्ज माफी हुई, उसके बाद देश भर में मांग उठ रही है, क्या आपको लगता है ये कर्ज माफी एक तरीका है, समाधान है?
ये सच है कि भाई इससे एकदम माफ करने से समाधान नहीं है कोई पूरा, मतलब लॉन्ग टर्म सोल्यूशन नहीं है, लेकिन आज हालात ऐसे हो चुके हैं, अगर आपने उनको मेन स्ट्रीम में लेके आना है किसानों को, तो एक बार उनकी स्लेट को आपको साफ करना पड़ेगा। आप देखिए कि सरकारी मुलाजिम को 108 अलाउंस मिलते हैं, जिसमें कॉन्डोम का अलाउंस भी होता है उपयोग का। मैं ये जानना चाहता हूँ कि कभी हमने सोचा है कि किसान की जो MSP है उसके अंदर ये कम से कम चार अलाउंस तो हम ऐड कर दें, उसको भी तो हाउस रेंट चाहिए, उसको भी एजुकेशन अलाउंस चाहिए, उसको मेडिकल अलाउंस चाहिए, उसको ट्रैवल अलाउंस चाहिए। अगर आप ये चार अलाउंस ही मिनिमम सपोर्ट प्राइस के अंदर फैक्टर कर दें तो मेरा मानना है कि किसान बहुत सी दिक्कतों से उभर के आ जाएगा।
ये थे देवेंद्र शर्मा, खेती किसानी मामलों के जानकार, जो बता रहे थे सरकार अपने वादे पूरे नहीं करती और किसानों को सड़कों पर उतरना पड़ता है। आगे सुनेंगे आप ब्रिटेन में होने वाले चुनाव पर कुछ ऐसा जिसे सुनकर ब्रिटेन के बारे में आपकी जानकारी निश्चित रूप से बढ़ेगी। लेकिन पहले आइए जानते हैं दिल्ली से छपने वाले अखबार आज क्या कह रहे हैं किसान सड़कों पर। कुलदीप
जी, संदीप, ज़्यादातर अखबारों ने मध्य प्रदेश में प्रदर्शनकारी किसानों पर पुलिस की फायरिंग में किसानों की मौत को तस्वीरों के साथ सबसे बड़ी खबर बनाया है। इसमें जो फ़र्क है अखबारों में वो ये है कि कुछ ने 5 किसानों की मौत की खबर दी है, कुछ ने ये आंकड़ा 6 बताया है। मैं द हिंदू का ख़ास तौर पर जिक्र करना चाहूँगा जिसके पहले पन्ने पर ही दाईं तरफ ये खबर है और बाईं तरफ असम के मोरीगांव ज़िले की एक तस्वीर है जिसमें बाढ़ में ख़राब हुई धान की फसल दिखाई दे रही है। तो नज़रिया ये है कि एक तरफ किसानों के लिए मौसम की मार है और दूसरी तरफ विरोध प्रदर्शनों में होने वाला ये बर्ताव है। एक खबर और है जो अमर उजाला में मुझे दिखी कि कोहली फाउंडेशन का एक चैरिटी कार्यक्रम था जिसमें जो है विजय माल्या एक अनचाहे मेहमान की तरह वहां पहुंच गए और विवाद से बचने के लिए कप्तान विराट कोहली समेत तमाम वहां भारतीय टीम के जो खिलाड़ी मौजूद थे वो वहां से चले गए। तो इसको चुपचाप भारतीय खिलाड़ी असहज हो गए थे इसलिए चुपचाप वहां से खिसक गए, ऐसा करके अमर उजाला ने छापा है। और इसी खबर को दैनिक जागरण ने इस तरह छापा है कि विराट की पार्टी के रंग में विजय माल्या ने डाला भंग। और ये आप जानते ही हैं कि 9,000 करोड़ रुपए का कर्ज उन पर बकाया है और वो भारत से जाकर लंदन में रहते हैं। एक खबर और है हिंदुस्तान टाइम्स ने पहले पन्ने पर दी है जिसने मुझे थोड़ा चौंकाया भी। खबर ये है कि गुजरात में 12वीं के टॉपर्स में से एक थे इस बार के वर्षिल शाह, 17 साल के, उनका परसेंटाइल 99.9 था। लेकिन अहमदाबाद का ये नौजवान अब एक जैन संत बनने जा रहा है, 8 जून को वो दीक्षा लेने जा रहे हैं।
काफ़ी रोचक खबर है।
हाँ, और एक खबर टाइम्स ऑफ इंडिया के पहले पन्ने पर है जो परेशान भी करती है, वो ये है कि 30 मई को 19 साल की एक मां ने 8 महीने की अपनी बच्ची की लाश के साथ दिल्ली मेट्रो में सफ़र किया। वो खबर ये थी कि इस महिला का कहना है कि इस घटना से एक दिन पहले उसके साथ 3 लोगों ने बलात्कार किया था, उसके बाद वो सुबह किन्हीं परिस्थितियों में ऑटो लेकर के अपने किसी जानने वाले के यहाँ पहुँची। वो बच्ची उस वक्त उसके साथ थी और आरोपी बच्ची को सड़क पर फेंक कर फरार हो गए थे, तो उस बच्ची की उसमें मौत हो गई और इस दौरान उसने मेट्रो में सफ़र किया।
काफ़ी चौंकाने और हैरान और परेशान करने वाली खबर
जी।
समाचार पत्रों की सुर्खियां आप सुन रहे थे कुलदीप मिश्र से, और आइए अब जानते हैं मेरे सहयोगी प्रभात पांडे और लंदन के स्कूल ऑफ ओरिएंटल एंड अफ्रीकन स्टडीज़ के प्रोफेसर सुबीर सिन्हा से ब्रिटेन के चुनाव के बारे में कुछ और रोचक तथ्य।
प्रोफेसर सिन्हा, सबसे पहले हमें ये बताएं कि ब्रिटेन के चुनाव में ईवीएम का इस्तेमाल क्यों नहीं होता?
खुफिया एजेंसीज ने और पुलिस ने और इलेक्शन कमीशन ने ये पाया कि इसको फूल प्रूफ नहीं मान के जब चला सकता है, क्योंकि ईवीएम को हैक करने के तरीके होते हैं। अब अगर इलेक्शन कमीशन डाल चल रही है तो हैक करने वाले जो है वो पांच चल रहे हैं। इसके अलावा जनसंख्या की बात है।
भारत और ब्रिटेन के चुनाव प्रचार में आप क्या फर्क देखते हैं?
रोड शो, बड़ी बड़ी रैलियां, जिससे कि पूरी यातायात में, ट्रांसपोर्ट में, ट्रैफिक में आप देखेंगे सारे का सारा शहर जो है वो एकाएक ठप पड़ जाता है। तो इस तरह का कैंपेनिंग स्टाइल यहाँ पे है ही नहीं। कैंपेनिंग स्टाइल यहाँ पे अभी तक वैसा ही चल रहा है कि लोग जो आपके यहाँ जो भी उम्मीदवार होता है या उसके कार्यकर्ता खुद आकर के एक बैलेट या किसी तरह की चिट्ठी आपके दरवाजे के नीचे से सरकाते हैं या हर दरवाजे पर आकर के दस्तक दे करके आपसे 2-3 बातें करते हैं। तो रैली और कैंपेन की जो शैली है वो भी एक शांत किस्म की रैली है और शैली है।
वहां पर चुनाव के खर्च को लेकर क्या कोई सीमा है?
हर एक कैंडिडेट अपने चुनाव के लिए सिर्फ £8,700 खर्च कर सकता है। अगर आपके कंस्टिट्यूएंसी को बरो का दर्जा दिया हुआ है तो आप हर वोटर के लिए 6 पेंस, और अगर काउंटी कंस्टिट्यूएंसी है तो हर वोटर के लिए आप 9 पेंस खर्च कर सकते हैं।
प्रोफेसर सिन्हा, हमें ये बताएं कि नेताओं और आम जनता के बीच ब्रिटेन में किस तरह का रिश्ता होता है?
जो नेता और मतदाता के बीच का फासला हम आज भी देखते हैं हिंदुस्तान में, वो फासला 20वीं सदी में खत्म हो चुका है। एक तरह से आम आदमी और चुनाव का जो प्रति में जो भी उम्मीदवार होता है वो एक ही स्तर का आदमी होता है, मोर और लेस आप ये बात कह सकते हैं। हमारे सोसाइटी में इक्वालिटी उस तरह से नहीं आई है। हम अभी तक अपने नेताओं को चाहते हैं कि वो एक महान पुरुष हो, जबकि यहाँ पे वो महान पुरुष वाली राजनीति को खत्म हुए कम से कम 4 से 5 दशक हो चुके हैं।
प्रोफेसर सुबीर सिन्हा थे ये। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कजाकिस्तान में 8 और 9 जून को संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की बैठक में हिस्सा लेने जा रहे हैं। ये घटनाक्रम काफ़ी अहम है क्योंकि इसमें चीन की अगुवाई वाले संगठन में भारत और पाकिस्तान को पूर्ण सदस्यता दी जाएगी। हमारे सहयोगी वात्सल राय ने अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार और किंग्स कॉलेज लंदन में प्रोफेसर हर्ष पंत से बात की और सबसे पहले यही पूछा कि मोदी का ये दौरा कितना मायने रखता है।
कजाकिस्तान सेंट्रल एशिया का बहुत इम्पोर्टेंट देश है और भारत के संबंध उसके साथ ट्रेडिशनली बहुत अच्छे रहे हैं, तो मेरे ख्याल से अगर भारत को सेंट्रल एशिया में अपनी प्रोफाइल को इंक्रीज करना है तो कजाकिस्तान एक नेचुरल पार्टनर है। 2015 में मेरे ख्याल से प्रधानमंत्री वहां गए थे, तब भी बहुत इम्पोर्टेंट MOU साइन करके आए थे। उसकी पोटेंशियल है एज एनर्जी सोर्स और मिनरल्स, दोनों में कजाकिस्तान काफी लीडिंग रोल प्ले कर रहा है और खासकर जहाँ पर न्यूक्लियर का क्वेश्चन है वहाँ पर यूरेनियम सप्लाई की भी बात थी और यूरेनियम सप्लाई में एक जो हमने सबसे पहली न्यूक्लियर डील थी वो कजाकिस्तान के साथ साइन करी थी।
रणनीतिक लिहाज से भी कजाकिस्तान की बड़ी अहमियत मानी जाती है, जहाँ अमेरिका का भी इंटरेस्ट है, रूस का भी है।
हाँ जी बिल्कुल, जो कजाकिस्तान है उसने काफी स्किलफुली मेजर पावर्स को बैलेंस किया हुआ है। एक समय था जब रूस का दबदबा हुआ करता था, धीरे धीरे कजाकिस्तान ने अपने रिलेशंस बैलेंस किए अमेरिका के साथ और अब आप देखिए चाइना तो वहाँ बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। तो जितने भी बड़े बड़े प्लेयर्स हैं वो कजाकिस्तान को एक तरह से क्रॉसरोड्स मानती हैं सेंट्रल एशिया के लिए और इसलिए अपना वहाँ पर प्रभुत्व जमाना चाह रही हैं काफी समय से।
प्रधानमंत्री के जाने का मुख्य मकसद शंघाई सहयोग संगठन की बैठक जो होनी है उसमें वो हिस्सा लेंगे। भारत इस संगठन में आता है तो क्या बदलाव आएगा?
भारत काफी समय से ऑब्जर्वर की भूमिका निभाता रहा है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में और शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन एक तरह से सेंट्रल एशिया के लिए एक पिवट ऑर्गेनाइजेशन है, सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन है, क्योंकि अगर आपको सेंट्रल एशिया में स्टेबिलिटी चाहिए तो आपको एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन चाहिए जो सेंट्रल एशिया को मैनेज कर पाए, वहाँ की जो प्रॉब्लम्स हैं और चैलेंजेस हैं उनको काउंटर कर पाए। शुरू में भारत नहीं चाहता था कि इसका फुल मेंबर बने। 2011-12 से भारत की कोशिशें ज्यादा तेज हुई हैं, समय पाकिस्तान और भारत दोनों इसके मेंबर बनेंगे, फुल मेंबरशिप ले लेंगे, तो इससे भारत को सेंट्रल एशिया में वहाँ के जो प्रॉब्लम्स है, वहाँ के जो चैलेंजेस है, वहाँ के जो पॉलिटिक्स है उसमें एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करने के लिए एक हेल्प मिलेगी और भारत अपने आप को रीजनल पावर के रूप में प्रोजेक्ट कर पाएगा। लेकिन इसमें मुझे लगता है कॉम्प्लिकेशंस भी बहुत हैं और सबसे बड़ी कॉम्प्लिकेशन ये है कि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में चीन का दबदबा है। चीन ने इसको शुरू किया था रशिया की मदद से, पॉलिटिकल कॉन्फ़िगरेशन देख रहे हैं तो उसमें चीन और रशिया इस समय बहुत साथ काम कर रहे हैं और अगर पाकिस्तान उसमें ऐड कर दिया जाए तो भारत के लिए थोड़ी सी समस्याएं डिप्लोमेटिक और पॉलिटिकल बढ़ भी सकती हैं।
भारतीय विदेश मंत्री ने साफ कर दिया है कि नरेंद्र मोदी जब कजाकिस्तान में होंगे तो उनकी मुलाकात नवाज शरीफ से नहीं होगी, लेकिन चीन के साथ क्या इस संगठन में आने के बाद रिश्ते कुछ बेहतर होंगे? NSG जिसका भारत सदस्य बनना चाहता है, चीन लगातार रास्ते में रोड़े अटका रहा है, क्या चीन के नजरिए में कुछ बदलाव आएगा?
देखिए भारत चीन के साथ काफी और ऑर्गेनाइजेशंस के तहत भी जुड़ा हुआ है, उससे तो कोई फर्क पड़ा नहीं भारत और चीन के संबंध में। ब्रिक्स जो सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है इमर्जिंग पावर्स का, उससे जुड़ा हुआ है, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ा। तो मुझे नहीं लगता कि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में जाने से भारत और चीन के संबंधों में इतना सुधार आने की उम्मीद की जा सकती है।
प्रधानमंत्री मोदी के कजाकिस्तान दौरे पर प्रोफेसर हर्ष पंत को सुन रहे थे आप और थोड़ी देर में भारत में बजने वाले हैं 7:00 वक्त हो चला है कार्यक्रम के समापन का। फिर सुनेंगे एक बार मुख्य समाचार।
BBC समाचार। खतर को अलग थलग किए जाने के बीच अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सऊदी अरब के शाह सलमान से बात की है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री टेरेजा मे ने कहा है कि वह मानवाधिकारों से जुड़ा ऐसा कोई भी कानून बदलने को तैयार हैं जो पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों को आतंकवाद से निपटने से रोकता हो। लंदन ब्रिज हमले को अंजाम देने वाले चरमपंथियों में से एक खुर्रम बट के चाचा ने बट के कृत्य की निंदा की है। अमरीकी रक्षा मंत्रालय ने चीन की सैन्य ताकत पर अपनी सालाना रिपोर्ट में कहा है कि चीन और विदेशी ठिकाने बना सकता है। बीबीसी समाचार।
मुख्य समाचार सुना रहे थे कुलदीप मिश्र और इस कार्यक्रम का तकनीकी पक्ष संभाल रहे थे राजेश चौहान। नमस्कार भारत में आज इतना ही। हमारा अगला प्रसारण दिन भर शाम 7:30 बजे। तब तक संदीप सोनी के साथ पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।